जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरावन चारी, यमुना तीरावन चारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरावन चारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, Thank you. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Giridhari Radha Giridhari Radhe. Jaya Jagannatha Jaya Jagannatha Baladeva Jaya Subhadra. Jaya Gauranita, Jaya Gauranita, Gauranita, Jaya Gauranita. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Srila Prabhupada. Jaya Gauranita, Gauranita, Jaya Gauranita. Nita Gaura Haribol, 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 Haribol.
विष्णुपाद परमहंस परिकाचार्यमद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्री राधा गिरधारी भगवान की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रामय की, श्री गौर निताय की, श्रील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम नवम स्कंद। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवयं भगवते उत्तम श्लोके भक्ति भक्ति नयष्टिके।
ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम नवम स्कंद अध्याय चार और इसका शीर्षक है दुर्वासा मुनि द्वारा अम्बरीश महाराज का अपमान और श्लोक संख्या है 67। तो कृपया मेरे बात दोहराए। मत सेवया प्रतीतम ते सालोक्य आदिचष्टुयम् आदिचतुष्टयम् न इच्छन्ति सेवया पूर्णा कुतः अन्यता काल विप्लुतम् मत सेवया प्रतीतम् ते मत सेवया प्रतीतम् ते सालोक्य आदिचष्टुयम् सालोक्य आदिचतुष्टयम् नेच्छन्ति सेवया पूर्णा नेच्छन्ति सेवया पूर्णा कुतोऽन्यत्कालविप्लुतम् मत्सेवया प्रतीतम् ते सालोक्य आदिचतुष्टयम् नेच्छन्ति सेवया पूर्णा कुतोऽन्यत्कालविप्लुतम्। मत्सेवया प्रतीतम् ते सालोक्य आदिचतुष्टयम् नेच्छन्ति सेवया पूर्णा कुतोऽन्यत्कालविप्लुतम्। मत्सेवया प्रतीतम् ते सालोक्य आदिचतुष्टयम् नेच्छन्ति सेवया पूर्णा कुतोऽन्यत्कालविप्लुतम्। मत्सेवया प्रतीतम् ते सालोक्य आदिचतुष्टयम् नेच्छन्ति सेवया पूर्णा कुतोऽन्यत्कालविप्लुतम्। मत्सेवया प्रतीतम् ते सालोक्य आदिचतुष्टयम् नेच्छन्ति सेवया पूर्णा कुतोऽन्यत्कालविप्लुतम्। मत्सेवया प्रतीतम् ते आदिचतुष्टयम् नेच्छन्ति सेवया पूर्णा कुतोऽन्यत्कालविप्लुतम्।
मत्ते मया प्रतीतं ते सालोक्याधिचतुष्टयम् सन्ति सेवया पूर्णा
माता जी
मत्सेवया प्रतीतं ते सालोक्या आदिचतुष्टयम् इच्छन्ति सेवया पूर्णा उतोन्यत्काल विप्लुतम्
शब्दार्थ इस प्रकार से है, मत सेवया मेरी प्रेमा भक्ति में संलग्न रहने से
प्रतीतम स्वतः प्राप्त ते ऐसे भक्त पूर्णतया तुष्ट होते हैं। सालोक्य आदि चतुष्टयम् चार प्रकार के मोच सालोक्य सारूप्य सामिप्य तथा साष्टी नहीं इच्छन्ति इच्छा करते हैं सेवया केवल भक्ति से पूर्णः पूर्ण कुतः कोई प्रश्न ही नहीं है अन्यता अन्य वस्तुए काल विप्लुतम काल क्रम से विनष्ट होने वाली। अनुवाद और तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरण भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद मेरे जो भक्त मेरी प्रेमा भक्ति में लगे रहकर सदैव संतुष्ट रहते हैं वे मोक्ष के चार सिद्धांतों सालोक्य सारूप्य सामिप्य तथा साष्टी में तनिक भी रुचि नहीं रखते, यद्यपि उनकी सेवा से ये स्वतः प्राप्त हो जाते हैं तो फिर स्वर्ग लोक जाने के नश्वर सुख के विषय में क्या कहा जाए। तात्पर्य शील बिल्व मंगल ठाकुर ने मोक्ष का मूल्यांकन इस प्रकार किया है, मुक्ति स्वयं मुकुलितांजलि सेवते स्मान धर्मार्थ काम गतया समय प्रतीक्षा। उन्हें अनुभव हुआ कि यदि कोई भगवान के प्रति अपनी सहज भक्ति उत्पन्न कर लेता है तो मुक्ति उसकी सेवा करने के लिए हाथ जोड़े खड़ी रहती है। दूसरे शब्दों में भक्त पहले से मुक्त रहता है, उसे भिन्न प्रकार की मुक्ति पाने के लिए आकांक्षा करना व्यर्थ है। शुद्ध भक्त को बिना चाहे ही मुक्ति स्वतः प्राप्त हो जाती है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं गुरुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथावितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखानितांश। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिरे निर्विशेष सुनवादि पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव उत्रेति तन्मतया तरवोभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभाव अखिलं श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितीर्षतां तमोन्धम् संसारिना करुणयाः पुराण गुह्यं तं व्यास सुनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। यं ब्रह्मा वरुडेन्द्र रुद्रमहितोऽस्तुवन्ति दिव्यस्तव वेदै साङ्गपदकमुपनिषदि गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यश्शान्तं न विदोसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। हरे कृष्ण। जय श्री श्री राधा गिरधारी भगवान की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रामय की, गौर निताय की। हरे कृष्ण। तो सबसे पहले मैं सभी वैष्णव की कृपा याचना चाहूंगा कुछ बोलने से पहले, क्योंकि बहुत सीनियर भक्त यहाँ पे बैठे हुए, अब हमको अचानक यहाँ पे बैठाया गया। तो जो भी आप वैष्णव लोग अगर कुछ कृपा करेंगे हमारे ऊपर तो मैं कुछ बोल पाऊंगा इसके विषय में आज के। तो श्रीमद् भागवतम का ये जो नव स्कंद चल रहा है, श्रीमद् भागवतम की जो कि भगवान का वाग्मयी स्वरूप है, ये श्रीमद् भागवतम भगवान का ही स्वरूप है, साक्षात भगवान वाग्मयी स्वरूप। श्रीमद् भागवतम के ऐसे तो महिमा अपार है, उसके अंतर्गत श्रीमद् भागवतम को जो कि 12वें स्कंद में ये विभाजित किया गया है, 12 स्कंद में इसकी रचना हुई है। ये 12वें स्कंद भगवान का ही अंग है, ऐसे वर्णन आता है कि श्रीमद् भागवतम का पहला और दूसरा स्कंद ये भगवान का चरण कमल है, और उसके बाद तीसरा और चौथा भगवान के कट के आगे वाला भाग है, और पांचवा स्कंद भगवान का नाभि है, और छठा स्कंद भगवान का वक्ष स्थल है, और सातवां और आठवां स्कंद भगवान का दोनों बाहु है, और उसके बाद नौवां स्कंद भगवान का कंठ है इस समय जो चल रहा है, और दसवां स्कंद भगवान का मुख कमल है, और ग्यारहवां भगवान का कपाल, और बारहवां भगवान का तिलक है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम जो है ये भगवान का अंग है, हर एक स्कंद भगवान का ये हर एक अंग है। तो इस प्रसंग जो कि आप लोग जानते हैं कि श्रीमद् भागवतम में 10 विषय वस्तुओं का वर्णन आता है, 10 विषय वस्तु श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत पाया जाता है, उसकी चर्चा हुई है पूरे भागवतम में। वो क्या है? अत्र सर्ग विसर्गस्य स्थानम पोषणमुतया वनवनंतरे सानुकथा निरोधो मुक्ति आश्रय। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उतया मनमंत्र ऐशानु कथा निरोधो मुक्ति आश्रय, ये 10 विषय वस्तु श्रीमद् भागवतम के में वर्णित है, और इस 10 विषय वस्तुओं के अंतर्गत इस समय जो प्रसंग चल रहा है वो ईशानु कथा के अंतर्गत आता है। ईशानु कथा का अर्थ जो कि इस 10 विषय वस्तुओं के छठा विषय वस्तु है, ईशानु कथा मनमंत्र ईशानु कथा, इसके अंतर्गत ये नवम स्कंद आता है। ईशानु कथा का अर्थ होता है कि भगवान के अनुगत जो भक्त हैं उनकी कथा, या भगवान और उनके भक्तों की कथा। तो ऐसे ही एक महान शुद्ध भक्त महाराज अम्बरीश की कथा इस समय चल रहा है, महाराज अम्बरीश और दुर्वासा का प्रसंग चल रहा है। तो आप लोग प्रसंग से परिचित ही हैं, लेकिन फिर भी एक बार मैं उस प्रसंग को अपने अच्छे के लिए उस प्रसंग को फिर से दोहराता हूँ। तो वो जो प्रसंग चल रहा है, जैसे कि दुर्वासा मुनि का, जैसे कि वर्णन वामबरीश महाराज का वर्णन आया कि वो कितने महान शुद्ध भक्त थे भगवान के, और उनके वर्णन करते हुए बहुत सारे श्लोकों में सुखदेव गोस्वामी उनके चरित्र के विषय में वर्णन करते हैं कि एक वो महान राजा थे, और राजा ही नहीं केवल वो महान भक्त थे भगवान के, शुद्ध भक्त थे। और उनका क्रियाकलापों का वर्णन करते हुए, जैसे कि आप लोगों ने सुन चुके हैं कि सवय मनः कृष्ण पदारविंदयो, इस प्रकार से महाराज अम्बरीश अपने हर एक अंग को भगवान की सेवा में लगाते थे, और उन्होंने एक आदर्श प्रस्तुत किया कि किस प्रकार से हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। देखिए, वो एक महान राजा थे, लेकिन राजा इतने महान राजा थे और भगवान के शुद्ध भक्त थे कि उनकी प्रजा, उनका प्रजा का जब वर्णन आता है तो उनकी प्रजा इतनी सुखी थी उनकी प्रजा के, वो स्वर्ग की भी सुविधा प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखते थे। समझ लीजिए कितनी सुखी प्रजा थे, तो राजा कितने महान होंगे। और स्वयं भगवान के महान शुद्ध भक्त अम्बरीश महाराज, जिन्होंने अपने हर एक इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया, जैसे अपने मन को भगवान कृष्ण का स्मरण करने में, अपने वाणी को भगवान का कथा करने में, अपने हाथ कर कमल को उन्होंने भगवान के सेवा करने में, चरण कमल को भगवान के मंदिर जाने में, इस प्रकार से अपने हर एक इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाकर उन्होंने हम बद्ध जीवों को सिखलाया कि किस प्रकार से भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो अम्बरीश महाराज के एक बहुत ही सुंदर प्रसंग, अम्बरीश महाराज जो कि महान भक्त, शुद्ध भक्त भगवान के, तो इस प्रकार उन्होंने हमको बहुत सारे शिक्षाएं प्रदान की कि इस प्रकार से हमें भगवान की सेवा, उनकी भक्ति करनी चाहिए। तो उस प्रसंग के अंतर्गत पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं हम कि अम्बरीश महाराज ने और उनकी जो पत्नी थी, उन्होंने दोनों ने मिलकर एक व्रत करने का निश्चय किया, एकादशी और द्वादशी व्रत का, बहुत ही कठोरता से पालन करने का व्रत लिया, और उन्होंने उसको बहुत अच्छी तरह से चालू भी किया और संपन्न चालू किया उसको अच्छी तरह से। तो जब व्रत बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने किया, और जब पारायण का समय आता है, मतलब कि जब व्रत तोड़ने का समय आता है, तो उस समय अम्बरीश महाराज ने अपने इधर सारे ब्राह्मणों भक्तों को बुलाकर वो उनकी सेवा, उनको दान, इस प्रकार से जो भी क्रियाकलाप है वो सब भुला के सारे प्रश्नों और ब्राह्मणों को भोजन वगैरह, उनको दक्षिणा वगैरह सब दे रहे थे। तो इस प्रकार सारे, क्योंकि व्रत तोड़ने का नियम ही है कि जब हम कोई व्रत करते हैं तो हमें तोड़ने से पहले वैष्णव भक्तों को, साधुओं को प्रसन्न करना चाहिए, उसके बाद व्रत को तोड़ना चाहिए, और तब जाके हमें उस व्रत का पूर्ण लाभ मिल सकता है। तो इस प्रकार अम्बरीश महाराज सारे भक्तों को संतुष्ट किया, सारे ब्राह्मणों को गाय दान दी, और अनेक प्रकार से आप लोग सुनते आ रहे हैं कि किस प्रकार से उन्होंने भक्तों की सेवा किया, और इस प्रकार उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से सेवा किया, और अपने व्रत को तोड़ने कुछ ही क्षण बाद उन व्रत को तोड़ने वाले थे। तो तभी उस समय हुआ क्या कि उसी समय दुर्वासा जी का आगमन हुआ। दुर्वासा जी हमेशा गलत टाइम पे ही आते हैं, मतलब जब भी कुछ गड़बड़ करना रहता तभी उसी समय आते। देखते हैं ना महाभारत के प्रसंग में, जब वन में पांचों पांडव द्रौपदी थे, तो उस समय भी उनकी सेवा के लिए कब आए, जब द्रौपदी ने अच्छे पात्र से सब ग्रहण कर लिया उसके बाद आए। तो इसी अभी ऐसी ही परिस्थिति यहाँ पे भी है कि दुर्वासा जी आए, उस समय सभी ब्राह्मणों को संतुष्ट कर चुके थे अम्बरीश महाराज, लेकिन दुर्वासा मुनि जैसे आए फिर भी कुछ ही क्षण बचा था पारायण के लिए, उस समय दुर्वासा जी का बहुत ही प्रेम से उन्होंने स्वागत किया और उनको आसन दिया बैठाने के लिए, और उनका चरण सेवा किया अम्बरीश महाराज ने, और बहुत ही उनके अच्छी तरह से सेवा किया और उनको भोजन ग्रहण करने के लिए बोला, और दुर्वासा मुनि भी बहुत संतुष्ट हुए उनके सेवा से, बोले कि मैं तुम्हारे सेवा से संतुष्ट हूँ, मैं जरूर प्रसाद ग्रहण करूंगा, भोजन ग्रहण करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा अपना दैनिक क्रियाकलाप करके आ जाता हूँ। तो तुरंत दुर्वासा मुनि वहां से गए गंगा के तट पे, गंगा में, और अपने दैनिक क्रियाकलाप करने लगे। उस समय हुआ क्या कि यहाँ पे अम्बरीश महाराज और भी बहुत सारे वैष्णव ब्राह्मण वहां पे उपस्थित थे, कि अम्बरीश महाराज देखने लगे कि ये जो व्रत का तोड़ने का समय है ये निकलता जा रहा है, व्रत तोड़ने का समय निकलता जा रहा है, और वो बहुत ही असमंजस परिस्थिति में पड़ गए कि अभी इस परिस्थिति में क्या किया जाए। बहुत सी सोचने लगे कि अगर व्रत को तोड़ लेता हूं तो वापिस वो मुनि अगर इधर आएंगे तो वो क्रोधित हो सकते हैं और श्राप भी दे सकते हैं, और अगर व्रत मैं नहीं तोड़ता हूं तो उस व्रत का कोई लाभ नहीं मिलेगा जो कि हमने इतनी कठोरता से किया। और इस असमंजस परिस्थितियों में पड़कर वो सोचने लगे क्या करना चाहिए, और इस सोचते हुए उन्होंने क्या किया, ब्राह्मणों की शरण ग्रहण किया। जो भी ब्राह्मण भक्त वहां पे मौजूद थे उन्होंने उनसे पूछा। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी सीख मिलती है कि जब हमें कोई भी भक्ति मार्ग में परेशानी आता है, कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो हमें अपने गुरु के पास जाना चाहिए, या हमसे जो भी सीनियर भक्त हैं या जो भी उच्च कोटि का वैष्णव है उनके पास जाकर उनसे पूछना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, कोई भी संकट परिस्थिति आता तो उसको खुद ही सॉल्व करने के विषय में सोचते हैं कि मैं उसके पास क्यों जाऊं। लेकिन ऐसा नहीं, अमरीश महाराज यहाँ पे प्रस्तुत करते हैं कि अगर हमारे जीवन में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दुविधा है, तो हमें किसके पास जाना चाहिए, गुरु वैष्णव साधु के पास जाना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए। जैसे कि अर्जुन और कृष्ण का सख्य प्रेम था, मित्रता विवाह था। लेकिन देखते हैं हम गीता में कि अर्जुन जब देखा महाभारत के युद्ध में, जब वहां पे कुरुक्षेत्र में पहुंचा, तो अर्जुन ने देखा कि हमारे सामने कौन खड़े जिनको मुझे मारना है, हमारे ही बंधु, हमारे ही मित्र, हमारे ही रिश्तेदार, हमारे ही गुरु पितामह, सब लोग हमारे ही बंधु हैं, मैं इनको कैसे मार सकता हूँ। बहुत ही दुविधा में पड़ गया और इतना संकट में पड़ गया कि उसका हाथ कांपने लगा और उसका गांडीव नीचे गिर गया। अभी तक अर्जुन का संबंध कृष्ण के साथ मित्र का था, लेकिन जब अर्जुन इस समस्या में पड़ गया, अभी वो कुछ सोच नहीं सकता, बौखला गया एकदम, तब क्या करता है, वो कृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकार करता है और उनकी शरण ग्रहण करता है। कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेह श्याम निश्चितम ब्रूहितन में शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नाम। इस प्रकार अर्जुन भगवान कृष्ण के साथ मित्रता व्यवहार ने उनको गुरु के रूप में स्वीकार करता है, उनकी शरण में जाता है, क्योंकि वो बौखला गया था। ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए, गुरु की शरण में जाना चाहिए। हमारे जीवन में भी जब कोई तकलीफ होता है, कष्ट होता है, भक्ति मार्ग में तकलीफ होता है, तो हमें किसी गुरु के शरण में जाना चाहिए। इस प्रकार जब अर्जुन भगवान कृष्ण के शरण में जाकर उनसे पूछता है कि हमको हमारे लिए क्या श्रेयस्कर, हमको क्या करना चाहिए, तब जाके भगवान कृष्ण एक गुरु बनकर उनको उपदेश देते हैं, और फिर अर्जुन आगे महान भक्त के रूप में भी जाना जाता है, आगे जो भी युद्ध हुआ। तो इस प्रकार अम्बरीश महाराज ने के भी बहुत ही असमंजस परिस्थिति में फंसे हुए थे, और उन्होंने तब ब्राह्मणों की शरण ग्रहण की, उनसे कृपा याचना की कि ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए बताइए। तब जाके ब्राह्मण बताए कि ऐसी परिस्थिति में आपको जल ग्रहण करने के विषय में उन्होंने बोला कि जल ग्रहण करना मतलब वो तरह से भोजन है भी नहीं भी है, और आपका व्रत भी पूर्ण हो जाएगा, उपवास भी तोड़ सकते हैं, और ये भोजन न करने के भी बराबर है। इस प्रकार का सलाह ब्राह्मण देते हैं उनको। तब अम्बरीश महाराज क्या करते हैं, ब्राह्मणों की सलाह, गुरुजनों की सलाह सुनकर उन्होंने थोड़ा जल ग्रहण कर लेते हैं, और उसके बाद प्रतीक्षा करने लगते हैं दुर्वासा मुनि का। और दुर्वासा मुनि उधर से अपने सब क्रियाकलाप समाप्त करने के बाद आए अम्बरीश महाराज के दरबार में, और जैसे है उन्होंने अपनी योग शक्ति से जान लिया कि इस समय अम्बरीश महाराज ने भोजन कर लिया है, और उनको बहुत ही क्रोध आया, बहुत इतना क्रोध आया कि उन्होंने अपने जटा से एक बाल निकाला और तुरंत ही एक राक्षसी कृत्या को उत्पन्न किया। बहुत ही क्रोधित हो गए, इतना क्रोध होकर अम्बरीश महाराज के ऊपर इतना क्रोधित होकर चिल्लाने लगे। लेकिन अम्बरीश महाराज, यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अम्बरीश महाराज उनके क्रोध से थोड़ा भी विचलित नहीं हुए। जो एक भक्त भगवान के प्रिय होता है, जो भगवान के सेवा में निरंतर लगा रहता है, वह उसको किसी भी चीज का डर नहीं रहता है, किसी भी चीज का डर नहीं रहता उसको। अम्बरीश महाराज हालांकि दुर्वासा जी इतना क्रोधित होकर कृत्या को भी उत्पन्न कर दिया, राक्षसी को उत्पन्न कर दिया, लेकिन फिर भी अम्बरीश महाराज में थोड़ा सा विचलन नहीं हुआ। और यहाँ पे यह भी अम्बरीश महाराज हमको सीख देना चाहते हैं, हम सभी लोगों को, कि हमें किसी भी परिस्थिति में कोई कितना भी हमारी निंदा करे, लेकिन ऐसी परिस्थिति हमको विचलित नहीं होना चाहिए, हमको हमेशा सहनशील रहना चाहिए। हालांकि अम्बरीश महाराज बोल सकते थे कि गुरुजनों ब्राह्मणों की सलाह से हमने इस व्रत को पूर्ण किया, इस प्रकार का बोल सकते, लेकिन अम्बरीश महाराज पूर्ण रूप से शांत रहे, उन्होंने सहन किया, उस क्रोध उल्टा क्रोध नहीं दिखाया, हालांकि दुर्वासा मुनि बहुत उनके ऊपर क्रोधित थे। तो इस प्रकार हम भक्तों को भी सीखना चाहिए कि कैसी भी परिस्थिति में कोई हमारे बहुत निंदा करे तो भी हमको उसको सह लेना चाहिए। एक्चुअली भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर मतलब उनके स्वयं के जीवन का उदाहरण है कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास एक व्यक्ति डेली आता था उनके दरवाजे पे और उनको डेली उनकी निंदा करता था। तो एक ऐसा ढोंगी ब्राह्मण है, ढोंगी साधु है, इस प्रकार से अनेक प्रकार की उनका गलतियों का निंदा करता था। तो ये सब देख कर लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या करते थे, उसको दिन में बुलाते थे और उसको प्रसाद खिलाते थे। सोचिए कि जो व्यक्ति उनका इतना निंदा कर रहा है और वो व्यक्ति को प्रसाद खिला रहे हैं, ये सब देखकर उनके जो शिष्य लोग देखकर बहुत आश्चर्य हुए कि ये व्यक्ति आता है और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के गुरु महाराज के इतना निंदा करता है, इतना निंदा करके जाता है, लेकिन फिर भी महाराज इनको बुला के प्रसाद खिलाते हैं। तो उन्होंने पूछा कि इस पर ऐसा क्यों, तो उन्होंने बताया कि ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे अंदर इतना अहंकार है कि मैं अपने कमियों को कभी जान नहीं पाता हूं कि हमारे अंदर क्या कमी है, लेकिन वो व्यक्ति हमारा मदद कर रहा है। वो क्या कर रहा है, हमारे गलतियों को बता रहा है जिससे हमें हमारी गलतियां समझने का एक मौका मिलता है, इसलिए मैं उसके ऊपर बहुत प्रसन्न हूं और उसको डेली प्रसाद खिलाता हूं। इस प्रकार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताया। तो हमें किसी भी परिस्थिति में हमारी कोई अगर निंदा करता है तो समझ लेना चाहिए कि हमारे अंदर कुछ कमी जरूर है, हमको उसको सुधारने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन हमारी कोई निंदा करता तो हम उसके ऊपर क्रोधित हो जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमें भक्ति मार्ग में प्रगति करना है तो हमें नम्र बनना पड़ेगा। जैसे कि श्री चैतन्य महापुरुष शिष्टाष्टकम के तीसरे श्लोक में बताते हैं कि त्रिणादपि सुनीचेन तरोदपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदाहरि। अगर भक्ति मार्ग में प्रगति करना है तो इस श्लोक को अपने गले में धारण कर लेना चाहिए कि हमेशा तृण के समान नम्र रहना चाहिए, पेड़ की तरह सहनशील होना चाहिए, किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होना चाहिए, मिथ्या भान की भावना से मुक्त होकर भगवान के हरिनाम को स्वीकार करके उनका जप कीर्तन भक्ति करना चाहिए। तो इस प्रकार अम्बरीश महाराज बिल्कुल विचलित नहीं हुए। और उसी समय हुआ क्या कि भगवान का सुदर्शन चक्र तुरंत आया और उस कृत्या को जलाकर भस्म कर दिया। भगवान का सुदर्शन चक्र, वो सुदर्शन चक्र जो कि भक्तों की रक्षा के लिए भगवान का आदेश की वेट नहीं करता है कि भगवान आदेश देंगे तब जाऊंगा मैं, ऐसा नहीं। भगवान उस सुदर्शन को बोल कर रखे कि अहम भक्त पराधीन हूं, मैं भक्तों के पराधीन, मैं भक्तों के वश में हूं, अगर हमारे भक्त के ऊपर कोई भी संकट आए किसी भी समय तो तुम मुझसे बिना पूछे तुरंत निकल जाना। और उसी समय तुरंत आया सुदर्शन और उस कृत्या को जलाकर राख कर दिया। और तुरंत फिर वो सुदर्शन और यहां पे दुर्वासा मुनि समझ गए कि जरूर महान अपराध हुआ है और इस बात को समझ गए और बहुत ही भयभीत होने लगे। और सुदर्शन फिर उनके पीछे लग जाता है दुर्वासा के। इस प्रकार का दुर्वासा मुनि बहुत विचरण किए, इधर गुफा में अलग अलग लोक में छुपने का बहुत बचने का बहुत प्रयत्न किए, लेकिन कहीं भी उनको ऐसा स्थान नहीं मिला जहां सुदर्शन से बच सके हो। और आखिर में ब्रह्मा जी के पास गए। एक कथा आप लोग सुने हैं कि आखिर में ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी स्वयं बताते कि हम भी काल चक्र के अंतर्गत है, हम इस भगवान के इस सुदर्शन का से आपको कोई रक्षा नहीं कर सकता, आप शिव जी के पास जाइए। फिर शिव जी के पास गए और शिव जी के पास जाकर उनसे भी कृपा याचना की। उन्होंने कृपा याचना करते हुए उन्होंने बताया कि इस प्रकार सुदर्शन सारी घटना को बताया और हमारी रक्षा करिए, सुदर्शन हमारे पीछे पर लगा हुआ है, बचाइए बचाइए। तो शिव जी भी वही बताते हैं कि हम भी काल चक्र में के, इस प्रकार आपने उन्होंने सुना इस प्रसंग को। और एक आचार्य तो ये वर्णन करते हैं कि जब शिव जी के पास दुर्वासा मुनि गए तो शिव जी से याचना करें हमको कोई उपाय बताइए इस सुदर्शन से बचने के लिए। तो उस समय शिव जी बोलते हैं कि मैं आपको कोई उपाय नहीं बताता क्योंकि हमारे पास उतनी बुद्धि है ही नहीं। वर्णन करते बताते हैं कि शिव जी बोल रहे हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस समय बहुत महाविष निकला था, हलाहल विष निकला था और उस विष को पीने से मेरा बुद्धि खराब हो चुकी है, इसलिए मैं इस सुदर्शन से बचने के लिए आपको कोई हल नहीं बचा सकता हूं। इस प्रकार से फिर आप एक काम करिए, आप जिनका सुदर्शन उन्हीं के पास जाइए, जरूर वो आपको कुछ ना कुछ बचने का उपाय बताएंगे। अब तब दुर्वासा ऋषि भगवान के पास जाते हैं और भगवान के पास जाकर साक्षात दंडवत प्रणाम करते हैं और उससे बचने का वो बचने के लिए बोलते हैं उनको। अभी जब भगवान के पास गए तब भगवान प्रवचन करना चालू करते हैं और भगवान के प्रवचन का ये पांचवा श्लोक है। भगवान प्रवचन करते हुए पहले श्लोक में बहुत ही सुंदर उन्होंने बताया कि अहम भक्त पराधीनो प्रवचन करते हुए उन्होंने पहले इस श्लोक में बताया भगवान कि अहम भक्त पराधीनो अस्वतंत्र इवद्विज साधु हृदयग्रस्तो भक्त भक्त जनप्रिय है। देखिए भगवान कितने यहाँ पे भगवान भक्तों की महिमा के विषय में बताते हैं कि कितने महान है भक्त। मैं उनके वशीभूत रहता हूँ। अहम भक्त पराधीनो मैं पूर्णतः हे ब्राह्मण हे द्विज मैं बिल्कुल स्वतंत्र नहीं हूं, अस्वतंत्र हूं। मैं कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं भक्तों के पराधीन हूं। अहम भक्त पराधीन, मैं उनके पूर्ण रूप से उनके वश में हूं और मैं उनके हृदय में निवास करता हूं। क्यों? प्रश्न उठता कि क्यों भगवान भक्तों के हृदय में क्यों निवास करते हैं? तो वर्णन आता है कि क्योंकि उनके अंदर कोई भी भौतिक इच्छाएं नहीं रहती हैं, बिल्कुल वो शुद्ध रहते हैं। जैसे कि नरोत्तम दास ठाकुर वर्णन करते हैं, तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम। तो भगवान भक्तों के हृदय में विश्राम करते हैं भगवान भक्तों, और यही बात को प्रस्तुत कर रहे हैं दुर्वासारी जी को। भगवान बता रहे हैं कि अहम भक्त पराधीनो, मैं बिल्कुल स्वतंत्र नहीं हूं, मैं भक्तों के अधीन में हूं, उनके वश में हूं, उनके वश में हूं और मैं उनके हृदय में निवास करता हूं। लेकिन यहां पे एक और शब्द लास्ट में, भक्त भक्त जनप्रिय, ये इस भगवान शब्द जो बोलते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। भक्त भक्त जनप्रिय, मैं केवल भक्तों को नहीं, जो हमारे भक्त हैं भक्तों के नहीं, बल्कि उनके उनके जो भक्तों के भक्त हैं उनसे भी, वो भी मुझे बहुत प्रिय हैं। तो जब मैं पढ़ रहा था सोच रहा था कि अभी थोड़ा आशा दिखता है, क्योंकि हम तो इतने शुद्ध शुद्ध भक्त है नहीं कि हमारे अंदर भगवान निवास करे, और इतने शुद्ध पवित्र तो है नहीं। लेकिन यहाँ पर भगवान जो शब्द बोलते हैं भक्त भक्त जनप्रिय, कि भक्त हमारे जो भक्त है उनके जो भक्त है वो भी मुझे प्रिय है। तो विशेष अनुकंपा ऐसी भक्तिवेदान स्वामी श्रील प्रभुपाद जी जिनके अनुगत्य में हम रहकर भजन कर रहे हैं, और निश्चित रूप से हमें हमारा लक्ष्य प्राप्त होगा, हम भगवान के प्रिय हो सकते हैं जब हम उनके बताए हुए निर्देशन के अनुसार चलेंगे। तो भक्त भक्त इस प्रकार से भगवान उपदेश देते हुए आगे आते हुए, जैसे कि कल के श्लोक में ये बताते हैं कि कल के श्लोक में बताते हैं कि जिस प्रकार एक पतिव्रता स्त्री अपने पति की सेवा करकर उसको पूर्ण रूप से वश में कर लेती है, उसी प्रकार मेरे जो भक्त होते हैं मेरी सेवा करके मुझे वश में कर लेते हैं, मैं उसके वशीभूत हो जाता हूं। इसलिए हे दुर्वासा मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। और इसके बाद ये पांचवा नंबर उपदेश देते हैं, ये श्लोक है। अब इस श्लोक के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। श्लोक है, मत सेवया प्रदितम ते सालोक्या आदि चतुष्टयम नेच्छन्ति सेवया पूर्णा कुतोन्यत काल विभ्लुतम। श्लोक है जो कि मत सेवया, मेरी मत सेवया का अर्थ होता है कि मत सेवया का अर्थ होता है कि मुझको प्रसन्न करने वाली सेवा, मेरी सेवा, मुझको प्रसन्न करने वाली सेवा। अभी प्रश्न उठता कि भगवान को प्रसन्न करने वाली सेवा क्या है, भगवान को प्रसन्न करने वाली सेवा क्या है? तो सब लोग जानते हैं कि भगवान को प्रसन्न करना, जैसे कि हमारे मंदिर में जैसे भगवान के लिए धन इकट्ठा करना, भक्त लोग जाते हैं बाहर पूरा दिन भगवान के लिए धन इकट्ठा करके लाते हैं, लाइफ मेंबरशिप, प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, अनेकों प्रकार की सेवा है। और उसके बाद भगवान के बारे में बोलना, उनकी कथाओं को करना और प्रचार करना, अनेकों प्रकार की सेवा है। इसको मत सेवया बोलते हैं, मत सेवया, जो मुझे प्रसन्न करने वाली सेवा है इसको। और विशेष देखा जाए तो जो नवधा भक्ति, जो प्रहलाद महाराज नवधा भक्ति के विषय में बताया गया है, बताते हैं कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासम सख्यम आत्मनिवेदनम। इस प्रकार की श्रवण कीर्तन ये सब सेवा के अंतर्गत आता है। इस प्रकार जो सेवा करता है वो मत सेवया के अंतर्गत आता है। और ऐसा भक्त जो कि मेरे सेवा में पूर्ण रूप से लगा रहता है और उसको इतना आनंद प्राप्त होता है कि वो इन मोक्ष के चार सिद्धांतों जिसका वर्णन आ रहा है कि सालोक्य शास्त्री सारूप्य तथा सामीप्य, इस प्रकार जो मोक्ष के चार सिद्धांत है इसको भी वो उसको प्राप्त होता है लेकिन वो उसको स्वीकार नहीं करता है। जैसे कि प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि बिल्वामन ठाकुर का उदाहरण देते हैं कि जो भक्त होता है, जो भगवान के प्रिय होते हैं, भगवान के जो जन होते हैं, भगवान के शुद्ध भक्त, वो उनके द्वार पे मुक्ति आकर खड़ी रहती है लेकिन फिर भी वो उसको स्वीकार नहीं करते हैं, उसको ठुकरा देते हैं। तो ये भक्त है, इसका वर्णन करते हैं। और अनेक जगह पे भगवान इस प्रकार का प्रवचन देते हैं, जैसे कि द्वादश स्कंद में मार्कंडेय ऋषि के प्रसंग में देखते हैं कि जब मार्कंडेय ऋषि भगवान का बहुत महान भक्त, जब वो अपने योग तपस्या कर रहे थे, बैठे थे योग तपस्या के लिए, उस समय शिव जी और पार्वती जी विचरण कर रहे थे, तो पार्वती जी ने देखा कि मार्कंडेय ऋषि कितने अपने इंद्रियों को संयमित करके और योग में बैठे हुए हैं, और परम प्रसन्न होते हैं पार्वती जी भी, और शिव जी से बोलते हैं, प्रभु ये इतना महान भक्त दिख रहा है, इसको आपको कुछ वरदान देना चाहिए। तो उस समय शिव जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे देवी, नैवेच्छन्त्याशीष क्वापि ब्रह्मर्षि मोक्षमप्युत भक्तिं परां भगवती लब्धवान पुरुषेश्वरे, कि हे देवी, ऐसा ये जो भक्त है, भक्तिम पराम भगवती, जो पराभक्ति को प्राप्त किया हुआ है, जो भगवान का इतना महान भक्त है, ऐसे भक्त को मोक्ष प्राप्त करने की भी इच्छा नहीं रहती है, तो और क्या याचना वो करेगा, और या क्या उसे चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए ऐसे भक्त को, कुछ भी हो अगर देने पर भी स्वीकार नहीं करता है। और तृतीय स्कंद में भी आता है कि भगवान स्वयं कपिल देव देवहितु को बताते हैं, देवहितु को उपदेश देते हुए बताते हैं कि सालुक्य साशे सामिप्य सारूप्य कर्तुमपिता दीन मानम न गृहणंती जना मत सेवनम जना बिना मत सेवनम जना। ये पांच प्रकार की मुक्ति, एक्चुअली पांच मुक्ति पांच प्रकार की है, सालोक की मुक्ति, सारूप मुक्ति, सामिप मुक्ति, साष्टी और सायुच्य, ये पांच प्रकार की मुक्तियां हैं। लेकिन ये जो श्लोक के अनुवाद में पांचवें प्रकार की जो मुक्ति है सायुज मुक्ति, इसका वर्णन नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि सायुज मुक्ति को वैष्णव लोग स्वीकार नहीं करते हैं। सायुज मुक्ति बोले तो एकदम घृणित कार्य है, घृणित, उसको बहुत घृणित मानते हैं, इसका इसलिए यहाँ पे वर्णन नहीं आया हुआ है। सुखदेव गोस्वामी इसका वर्णन नहीं करते हैं सायुज मुक्ति का। सायुज मुक्ति मतलब क्या है? भगवान से तदाकार होना, भगवान में लीन हो जाना, और ये अच्छी बात नहीं है। जैसे उदाहरण के रूप में, जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक माता को पुत्र प्राप्त हुआ, और बड़े होने के बाद वो बोलता है कि नहीं, वापिस हमें गर्भ में जाना है, कितना गंदा कार्य विचार है, तो ये सायुज मुक्ति, इसलिए वैष्णव इसको स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए इसका वर्णन यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी नहीं करते हैं। चार ही सिद्धांतों का वर्णन करते हैं कि ये भी मुक्तियां प्राप्त होती है जो कि सर्वश्रेष्ठ है, फिर भी भक्त इच्छा नहीं करता है। और भी भगवान और भी जगह पे प्रवचन करते हुए एक जगह पे बताते हैं कि ये एकादश स्कंद में उद्धव को उपदेश देते हुए बताते हैं, उद्धव को उपदेश देते हुए बताते हैं कि न किंचित साधो धीरा भक्ता योकांतितो मम वाच्छन्त्यपि मया दत्तम कैवल्यम अपुन अर्भवम। बताते कि न किंचित साधो धीरा, जो धीर व्यक्ति है, जो हमारे धीर भक्त है, जो कि किंचित भी उनके लेस मात्र भी उनके अंदर इच्छा नहीं है किसी भी चीज का, और जो कि एकांत रूप से मेरे भजन में लिप्त हो चुके हैं, और उनके अंदर अगर मैं उनको कुछ प्रदान भी करना चाहता हूं तो उसको अस्वीकार कर देते हैं, जो एकांतिक रूप से मेरी भक्ति में निष्ठ हो चुके हैं, और उनको कैवल्य भी प्राप्त करने की बिल्कुल इच्छा नहीं रहता है, कैवल्य प्राप्त करने की भी इच्छा नहीं रहता है। तो यहाँ पे इस श्लोक के लास्ट में बताया कुतोन्यत काल विप्लुतम, जब उनको इन प्रकार चारों मुक्तियों की भी इच्छा नहीं रहता है जो कि उनके द्वार पे खड़ी रहती है, तो कुतोन्यत काल विप्लुतम, इस काल के प्रभाव से नष्ट हो जाने वस्तुओं की क्या इच्छा करेंगे, वो लोभ मान प्रतिष्ठा ये सब की क्या इच्छा करेंगे, जब इतनी बड़ी चीज को वो छोड़ दे रहे हैं तो काल के प्रभाव से जो लुप्त हो जा रहा है उसकी इच्छा क्या करेंगे, वो बिल्कुल नहीं करते हैं। और इन मुक्तियों के बारे में देते हुए श्री रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामी शुद्ध में वर्णन करते हैं कि सेम जो कपिल देव बताते हैं, वो रूप गोस्वामी पाद भी बताते हैं कि सालोक्य साक्ष्य सामिप्य सारूप्य कर्तुमपिता दीन मानम न गृहंती जना मत सेवनम बिना मत सेवनम जना। जो भगवान के भक्त होते हैं उनको ये पांच प्रकार की मुक्तियां बहुत ही आसानी से अपने आप मिल जाती हैं, जो उनके पूर्ण रूप से उनके सेवा में लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी भक्त लोग इसको स्वीकार करने की प्राप्त करने की स्वीकार करने करते ही नहीं, वो केवल एक ही इच्छा रखते हैं, केवल जन्म जन्मांतर वो भगवान की किस प्रकार से सेवा करे, किस प्रकार से उनको सेवा मिले, एक ही इच्छा करते हो। तो इस प्रकार हमें भी चाहिए कि हमें पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में मत सेवया उनकी सेवा में लगे रहना चाहिए, और इस प्रकार से हमें सेवा करना चाहिए कि भगवान हमारा स्मरण करें, भगवान हमको ध्यान रखे, भगवान हमारा हमको याद करे, इस प्रकार के भगवान की सेवा करना चाहिए। प्रसंग आता है जैसे कि रामायण में प्रसंग आता है कि एक बार भगवान श्री राम के पास एक भक्त आया और भगवान राम को बोला कि प्रभु मैं आपके जो निकटवर्ती भक्त है उनके नाम जानना चाहता हूं। तो प्रभु राम ने बोला ठीक है। उन्होंने क्या किया, एक डायरी उठा के दे दिया कि लो इसमें नाम लिखे हैं सब पढ़ लो। तो भक्त पढ़ने लगा, पढ़ते गया, बहुत ही लंबा लिस्ट था, पढ़ते गया, देखा लास्ट तक पढ़ लिया, लेकिन देखा उसमें हनुमान का नाम ही नहीं है। तो बहुत ही आश्चर्य हुआ कि हनुमान जी इतना महान कार्य, सब भगवान की इतनी भक्ति करते, लेकिन इस लिस्ट में उनका नाम ही नहीं है। आश्चर्य होकर सोचने लगा, लगता है कि हनुमान जी फेल हो गए, और तुरंत ही वो हनुमान जी के पास भागा बहुत ही उत्साह के साथ बताने के लिए कि आप फेल हो गए, क्योंकि लोगों को फेल और पास का रिजल्ट सुनाने में बहुत मजा आता है। इस प्रकार वो भक्त तुरंत भाग के गया हनुमान जी के पास। हनुमान जी के पास बताया कि हनुमान जी लगता आप फेल हो गए, आपने समुद्र को लांगा, इतना युद्ध किया, लंका को जला दिया, इतना सेवा किया भगवान का, लेकिन इस प्रकार है जब मैं भगवान से उनके भक्तों का नाम पूछा तो उस लिस्ट दिया उसमें आपका नाम ही नहीं है, लगता आप फेल हो गए। तो हनुमान जी भी सोचने लगे कि अरे ऐसा है। वो सोचते हुए वो भगवान प्रभु राम के पास पहुंचे और उन्होंने पूछा भगवान से कि प्रभु मैं ये क्या सुन रहा हूं, इस प्रकार का सुन रहा हूं। तो प्रभु राम बोलते कि क्यों तुम इस प्रकार चिंतित क्यों हो गए। तो बोले प्रभु इस प्रकार से सुन रहा हूं कि मेरा ऐसा कुछ नाम नहीं है आपके सेवा के लिस्ट में। तो प्रभु राम बोले कि नहीं ऐसी बात नहीं हनुमान। उन्होंने एक और डायरी निकाला और एक निकाला उनको दिया और उसमें सबसे पहले हनुमान जी का नाम था। तो हनुमान जी सबसे पहले हनुमान जी का नाम था। तो भगवान वहां पे बताते हैं कि हनुमान जो मैंने पहले जो डायरी दिया था उसमें उन भक्तों का नाम था जो कि मेरा नित्य प्रतिदिन मेरा सेवा पूजा करते हैं, मेरा नित्य प्रतिदिन स्मरण करते हैं, लेकिन ये जो मैं अपने हृदय के पास लगा कर रहता हूँ ये उन भक्तों का नाम है जिनका मैं नित्य रूप से स्मरण करता हूँ, उन भक्तों का नाम इसमें है। तो हमको इस प्रकार से भगवान की सेवा करना चाहिए कि भगवान हमारा स्मरण करे। हमारा गौड़ीय मूड भी यही है कि हम भगवान का दर्शन करने नहीं जाते क्योंकि हम भगवान का दर्शन कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि भगवान का दर्शन करने के लिए प्रेमान जनत छुरित भक्ति विलोचन न, प्रेम के अंजन चाहिए भगवान का दर्शन करने के लिए, लेकिन हमारे पास वो अभी तक है नहीं। तो हम भगवान को दर्शन करने नहीं, भगवान को दर्शन देने जाते हैं कि हम भगवान खड़ा हो हमारा अटेंडेंस ले लीजिए, दर्शन देने जाते हैं, ये हमारा गौड़ीय मूड है। तो इस प्रकार से हमें भगवान की सेवा करना चाहिए कि भगवान हमारा स्मरण रखे, हमारा ध्यान रखे। हम क्या भगवान के ध्यान रख सकते हैं, हमारे पास उतना बुद्धि है कि ध्यान रख सकते हैं भगवान का। इस प्रकार से सेवा उनकी करनी चाहिए, मत सेवाया, सेवा करनी चाहिए कि हमें भगवान नित्य स्मरण करें। और भी एक प्रसंग आता है जैसे कि महाभारत में दुर्योधन के पास एक नाई था। देखिए भगवान इतने कृपालु हैं कि भक्तों के इतने वशीभूत हो जाते हैं कि वो भक्तों के लिए भी उनको जीवन में कुछ भी तकलीफ नहीं आने देते हैं, कोई भी तकलीफ नहीं आने देते हैं, उनके हर कार्य को कर लेते हैं। स्वयं उनको चिंता रहती है कि हमारे भक्तों को कुछ तकलीफ ना हो। एक वृंदावन के एक संत बताते हैं कि प्रबल भक्त के पाले पड़कर प्रभु के नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त के मान न टलते देखा। इस प्रकार का होता है कि भगवान कभी भी भक्तों के मान को कभी भी नहीं टलने देते, उनको कभी भी तकलीफ नहीं हो जाते थे। क्यों? क्योंकि अहम भक्त पराधीन हो, वो भक्त के अधीन है। तो दुर्योधन के पास एक नाई आता था दुर्योधन के पास, और नित्य रूप से वो उनके दुर्योधन का मसाज सेवा वगैरह करके जाता था, और वो भगवान का भक्त था नाई, तो नित्य प्रतिदिन ऐसा करता था वो। लेकिन एक दिन की घटना है कि नाई बीमार पड़ गया, और बीमार पड़ गया तो वो सोचने लगा कि अगर मैं सेवा में नहीं जाऊंगा तो दूसरे दिन जब जाऊंगा तो दुर्योधन मुझे निकाल देगा या बहुत चिल्लाएगा, इस प्रकार का डर लग रहा था उसको। उसने बहुत प्रयास किया जाने के लिए, लेकिन तबीयत इतना खराब होने के नाते वो नहीं जा पाया सेवा में, और बहुत ही चिंतित हो गया कि अगर मैं ठीक होने के बाद गया दुर्योधन के पास तो निश्चित रूप से दुर्योधन मुझे निकाल देगा। तो लेकिन देखिए भगवान ने क्या किया, उस भक्त के लिए स्वयं नाई बन गए और नाई बनकर जाकर दुर्योधन का सेवा किया। दुर्योधन कौन? साथ कली का रूप, लेकिन भगवान नाई बनकर दुर्योधन का जाकर चरण दबा रहे हैं, चरण दबाया। और उस समय दुर्योधन बहुत प्रसन्न हुआ, सोचने लगा कि नाई आज तुमको क्या हुआ, बहुत अच्छी तरह से सेवा कर रहा है, और इतना प्रसन्न हुआ कि उसने बहुत ही स्वर्ण मुद्राएं उस नाई को दिया, मैं तुमसे आज बहुत प्रसन्न हूं, तुमने बहुत अच्छी तरह से आज सेवा किया। और इस प्रकार भगवान सेवा करके चले गए नाई के रूप में। दूसरे दिन जब नाई सेवा में आने लगा दुर्योधन के, तो रास्ते पर पसीने पसीने निकल रहे हैं उसको है। सोच रहा है कि अगर मैं अभी जा तो रहा हूं, लेकिन निश्चित रूप से दुर्योधन बहुत क्रोधित होगा, क्योंकि दुर्योधन का स्वभाव वो जानता था। बहुत पसीने पसीने लगा, बहुत चिंतित अवस्था में जा रहा है, लेकिन जैसे ही दुर्योधन के दरबार में पहुंचा, दूर से ही दुर्योधन देखा और बोला कि बहुत चिल्लाने लगा, आओ नाई आओ, तुमने बहुत ही अच्छी तरह से मेरा सेवा किया है, कल बहुत मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। और नाई सोचने लगा कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा प्रसन्नता तो कभी नहीं किया दुर्योधन। उसने सोचा ये मिथ्या प्रशंसा कर रहा है, बहुत फिर भी डर उसका नहीं जा रहा था। लेकिन चलते चलते उसने देखा कि वास्तव में दुर्योधन प्रसन्न है, और भक्त होने के नाते वो समझ गया कि हमारी रक्षा कौन किया, भगवान ने किया। तो भक्त जो होते बुद्धिमान होते, वो समझ जाते हैं कि भगवान किस प्रकार से हमारी रक्षा करते हैं। तो इस प्रकार से हमको सेवा में लगे रहना चाहिए, सेवा करना चाहिए, मत सेवाया, सेवा करना चाहिए कि भगवान हमसे प्रसन्न हो, भगवान हमारा स्मरण करें, और इस प्रकार से हमको सेवा करते हुए भगवान के चरण में उनसे प्रार्थना करते हुए और उनकी भक्ति को स्वीकार करें, ताकि हमारे जीवन का जो लक्ष्य है कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सके। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। कोई अगर त्रुटि हुआ तो क्षमा करिए, क्योंकि कोई तैयारी नहीं था। नहीं।